एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। एकत्र फाउंडेशन की इस विशेष प्रस्तुति ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास पर बात करने वाले हैं।
हाँ, कालियाने ब्रैडली का पहला उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ टाइम।
बिल्कुल, ब्रैडली जो ब्रिटिश कंबोडियन पृष्ठभूमि से हैं, उनका अकादमिक ज्ञान उनके लेखन में साफ झलकता है।
और ये उपन्यास मतलब किसी एक जॉनरा का नहीं है।
सही कहा, ये किसी एक खांचे में फिट नहीं बैठता। इसमें आपको साइंस फिक्शन मिलेगा, इतिहास है, रोमांस भी है,
ऑफिस कॉमेडी और यहाँ तक कि जासूसी थ्रिलर के तत्व भी हैं। वाकई कई रंगों का मिश्रण है।
हाँ, इशिगुरो, लोकी, टाइम ट्रैवलर्स वाइफ, ऐसी कई कृतियों से इसकी तुलना भी हुई है।
अच्छा, सोचने वाली बात है। कहानी का सेटअप ही बड़ा अनोखा है।
भविष्य का लंदन।
हाँ, निकट भविष्य का लंदन और एक गुप्त सरकारी मंत्रालय जिसने समय यात्रा की तकनीक विकसित कर ली है और वो इतिहास से लोगों को ला रहे हैं।
जिन्हें एक्सपैट्स कहा जाता है, उन्हें उनकी निश्चित मृत्यु से ठीक पहले वर्तमान में लाया जाता है।
तो मंत्रालय का घोषित लक्ष्य क्या है, मतलब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
देखिए, घोषित लक्ष्य तो है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और समय विस्थापन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करना।
अच्छा, और इसके लिए उन्होंने ब्रिज रखे हैं।
हाँ, सिविल सेवक जिनका काम है इन एक्सपर्ट्स को आज की दुनिया, तकनीक, सामाजिक रीति रिवाजों, इन सब के अनुकूल ढालने में मदद करना।
सुनने में तो एक अकादमिक प्रोजेक्ट जैसा लगता है।
ऊपरी तौर पर तो हाँ, लेकिन यहीं से उपन्यास का केंद्रीय सवाल उठता है। इस कार्यक्रम की मानवीय कीमत क्या है?
मतलब
ये कि ये एक्सपर्ट्स जिन्हें उनके समय से, उनकी दुनिया से उखाड़ दिया गया है, क्या वो महज अध्ययन की वस्तु बन जाते हैं? नौकरशाही का हेरफेर, निगरानी?
ओह, तो शोषण और सहमति जैसे मुद्दे भी हैं।
बिल्कुल,
वैज्ञानिक प्रगति की नैतिकता पर सवाल।
बिल्कुल, क्या नियंत्रण के लिए बनी व्यवस्थाओं के भीतर सच्चा मानवीय जुड़ाव पनप सकता है?
और क्या प्यार, क्या प्यार समय, संस्कृति और सत्ता की इन दीवारों को तोड़ सकता है?
यही मूल प्रश्न है, और इन सवालों के केंद्र में हैं हमारे मुख्य पात्र।
हाँ, कहानी की नरेटर वो एक अनाम ब्रिटिश कंबोडियन सिविल सर्वेंट है, एक ब्रिज।
हाँ।
उसका किरदार शुरू में कैसा है?
शुरुआत में तो वो काफी, कह सकते हैं, पेशेवर तौर पर अलग थलग सी है, भावनात्मक रूप से सतर्क,
अपनी विरासत और वर्तमान से कटी हुई महसूस करती है।
हाँ, कुछ वैसा ही, थोड़ी अकेली है, जिससे वो अपनी हाजिर जवाबी और व्यंग्य के पीछे छुपाती है।
अच्छा, लेकिन उसकी जिंदगी बदलती है।
हाँ, जब उसे कमांडर ग्रहम गोर की जिम्मेदारी मिलती है।
गोर?
हाँ,
वो एक एक्सपैट है।
हाँ, और गोर के साथ उसका रिश्ता उसे धीरे धीरे खोलता है। एक भावनात्मक जागरण होता है उसका। वो अपनेपन, अपने परिवार के इतिहास, अपनी भावनाओं, इन सबको स्वीकार करना सीखती है।
बिल्कुल, वो एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक से एक सक्रिय, नैतिक रूप से जागरूक इंसान बनती है। ये उसकी यात्रा है।
और दूसरा मुख्य पात्र कमांडर ग्राहम गोर, इनके बारे में बताइए।
कमांडर गोर वो असल में एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, सर जॉन फ्रैंकलिन के 1845 के आर्कटिक अभियान से।
ओह, तो एक विक्टोरियन नौसेना अधिकारी आज के लंदन में?
हाँ, कल्पना कीजिए, वो बेहद विनम्र, सम्मानित, बुद्धिमान, लेकिन अंदर एक गहरा दुख लिए हुए।
दुख किस बात का?
अपने खोए हुए साथियों का, अपनी दुनिया का, अपने मकसद का। जैसे जैसे कोई जिंदा भूत।
जिंदा भूत, ये बहुत सटीक है। तो उसकी यात्रा क्या है?
उसकी यात्रा इसी गहरे शोक और समय के विस्थापन से जूझने की है। आधुनिक दुनिया उसके लिए एक अजूबा है,
जिसका वो बड़ी गंभीरता से विश्लेषण करता होगा।
हाँ बिल्कुल, लेकिन कथावाचक के साथ उसका रिश्ता वो उसके लिए एक लंगर जैसा बन जाता है।
उसे जीने का एक नया मतलब मिलता है।
हाँ, और वो अपनी 19वीं सदी की पहचान को इस नई हकीकत के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। वो दिखाता है कि सम्मान, दया, प्रेम, ये गुण किसी एक समय के नहीं होते, ये कालातीत है।
कहानी में और भी पात्र है ना, सहायक पात्र?
हाँ, कुछ अहम किरदार हैं, जैसे मार्गरेट मैगी कैम्बल, वो मंत्रालय की निदेशक हैं।
रहस्यमयी और ताकतवर।
बिल्कुल, और नैतिक रूप से काफी अस्पष्ट। वो उपयोगितावादी नैतिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं कि अन्य साधनों को सही ठहराता है।
और कोई?
कैप्टन जॉन है, वो भी फ्रैंकलिन अभियान से ही है, गौर की तरह, लेकिन वो गौर के बिल्कुल उलट है।
कैसा है वो?
बहुत कड़वाहट से भरा हुआ, निंदक। वो इस नए समय से बिल्कुल तालमेल नहीं बिठा पाता।
और एक सहकर्मी भी है शायद।
हाँ, आर्थर कथावाचक का सहकर्मी, वो भी एक ब्रिज है। वो ऑफिस की दुनिया, वहां की चिंताओं का प्रतीक है।
ठीक है, तो इन किरदारों के साथ कहानी आगे बढ़ती है, शुरुआत कैसे होती है?
कथावाचक ये नौकरी लेती है। हाँ, वो ये थोड़ी रहस्यमय सी नौकरी स्वीकार करती है और कमांडर गोर को उसके एक्सपर्ट के रूप में सौंपा जाता है।
फिर वो साथ रहने लगते हैं एक फ्लैट में।
हाँ, सरकारी फ्लैट में। और फिर शुरू होता है गोर को आज की दुनिया सिखाने का सिलसिला। बिजली, स्पॉटिफाई, नारीवाद, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन, सब कुछ।
मजेदार रहा होगा वो सांस्कृतिक टकराव और हास्य।
हाँ, शुरुआती हिस्से में काफी हास्य है। उनके मजाकिया नोकझोंक धीरे धीरे एक रिश्ते की शुरुआत बनती है। थोड़ा ऑफिस कॉमेडी जैसा माहौल।
लेकिन ये हल्कापन शायद टिकता नहीं।
नहीं, ज्यादा देर नहीं। जैसे जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं, रिश्ता गहरा होता है।
वो अपनी बातें साझा करते हैं, गोर अपने आर्टिक के अनुभव।
हाँ, वो भयानक अनुभव। और कथावाचक भी अपने अकेलेपन, अपनी पहचान के संघर्ष के बारे में खुलती है।
और यहीं पेशेवर सीमा धुंधली होने लगती है।
बिल्कुल, एक मजबूत आकर्षण पैदा होता है और फिर वो प्यार में पड़ जाते हैं।
लेकिन मंत्रालय का नियम तो था, अंश के साथ साथ थोड़ी थ्रिलर जैसी भी होने लगती है।
हाँ, क्योंकि इसी दौरान कथावाचक को मंत्रालय पर शक होने लगता है।
शक? किस तरह का?
उसे लगता है कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों की बातों में कुछ छिपा हुआ तनाव है। वो क्रोनोक्लाज्म जैसी किसी चीज के बारे में सुनती है।
क्रोनोक्लाज्म? कोई लौकिक तबाही?
हाँ, कुछ ऐसा ही। और मैगी, जो बॉस है, उसका टाल मटोल वाला रवैया उसके शक को और बढ़ाता है। मामला गड़बड़ लगने लगता है।
तो वो जांच करने का फैसला करती है।
हाँ, गोर के लिए उसका प्यार और ये बढ़ता हुआ खतरा उसे सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करता है। और जो सच सामने आता है वो भयानक है।
क्या पता चलता है उसे?
उसे पता चलता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टाइम, ये कोई साधारण ऐतिहासिक अध्ययन नहीं कर रहे।
तो फिर?
ये लोग भविष्य में आने वाली एक भयानक जलवायु आपदा की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसी आपदा जो शायद सभ्यता को ही मिटा दे।
ओह, और एक्सपर्ट्स का क्या? उन्हें क्यों लाया गया था?
उन्हें यूं ही नहीं चुना गया था। हर एक को उनकी खास क्षमता के लिए चुना गया था। चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता, जैसे गौर आर्कटिक में रहा था।
मतलब वो मेहमान नहीं थे?
नहीं, वो मानव परीक्षण विषय थे। उनका डेटा इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि अभिजात वर्ग के लिए बचने की रणनीतियां बनाई जा सके। जैसा कहा गया है, अतीत एक विदेशी देश नहीं, ये एक शरणार्थी शिविर है।
बाप रे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। इतिहास से लोगों को निकाल कर भविष्य के लिए इस्तेमाल करना।
हाँ, ये मंत्रालय का असली चेहरा था। उनका मिशन अतीत का संरक्षण नहीं, बल्कि भविष्य के लिए उसका शोषण करना था।
तो फिर कथावाचक और गोर क्या करते हैं? एक नैतिक संकट खड़ा हो गया होगा।
बिल्कुल, वो दो गुटों के बीच फंस जाते हैं। एक तरफ मंत्रालय और मैगी, जो कहती हैं कि ये अधिकतम लोगों की भलाई के लिए जरूरी है, उपयोगितावादी नजरिया।
और दूसरी तरफ
एक विरोधी गुट, जो मंत्रालय के भीतर ही है और इस योजना को अनैतिक मानता है।
तो उन्हें चुनना पड़ता है, मंत्रालय के साथ एक सुरक्षित पर नैतिक रूप से खोखला भविष्य,
या विद्रोह का अनिश्चित रास्ता, या फिर शायद अपनी आजादी का कोई तीसरा ही रास्ता।
उपन्यास का अंत कैसा होता है? क्या वो जीतते हैं?
देखिए, ये कोई सीधी साधी जीत या हार वाली कहानी नहीं है। कथावाचक और गौर मंत्रालय से सीधे नियंत्रण से बच निकलने में कामयाब तो होते हैं,
लेकिन
इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उनका भविष्य अनिश्चित है, वो आने वाली तबाही के बारे में जानते हैं, और गौर अब कभी अपने समय, अपने घर नहीं लौट सकता।
तो अंत किस पर केंद्रित है?
अंत किसी बड़ी लड़ाई को जीतने कर नहीं, बल्कि उनके आपसी प्रेम की व्यक्तिगत और गहरी जीत पर है। उन्होंने हर मुश्किल के बावजूद एक दूसरे को चुना। इस अराजक दुनिया में उन्होंने समय और अर्थ की अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई है। एक तरह की आशावादी उदासी है अंत में।
कहानी बहुत सारे विषयों को छूती है, सबसे प्रमुख क्या लगता है?
मेरे ख्याल से सबसे ऊपर तो समय के पार प्रेम का विषय है।
कथावाचक और गोर का रिश्ता जो 200 साल के फासले को पाटता है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सहानुभूति और भावनात्मक जुड़ाव वो सांस्कृतिक, तकनीकी, यहाँ तक कि समय की बाधाओं को भी लांग सकता है।
वो ये प्रेम कहानी, जैसा आपने कहा, विस्थापन और पहचान से भी जुड़ी है
बहुत गहराई से। गोर का तो शाब्दिक विस्थापन है ही, लेकिन कथावाचक भी अपनी ब्रिटिश कंबोडियन पहचान के कारण एक तरह के सांस्कृतिक बीच में होने का अनुभव करती है।
बाहरी होने का ये साझा एहसास उन्हें जोड़ता है,
उनका आधार है। उन्हें एक दूसरे में वो अपनेपन का एहसास मिलता है। जैसे उपन्यास में एक जगह है, कि प्यार मतभेदों को पाटने के बारे में नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बनाने के बारे में था जहां मतभेद सह अस्तित्व में रह सकें।
वाह, उपन्यास शक्ति और प्रगति की नैतिकता पर भी सवाल उठाता है।
हाँ, बहुत गंभीर सवाल। क्या लक्ष्य साधनों को सही ठहरा सकता है? मंत्रालय का वो ग्रेटर गुड का तर्क, वो असल में सरकारी नियंत्रण और व्यक्तियों के अमानवीयकरण पर एक तीखी टिप्पणी है।
हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रगति की असली कीमत क्या है।
बिल्कुल, जैसा एक जगह कहा गया है, मंत्रालय ने समय यात्रा जैसी अद्भुत और भयानक मानवीय उपलब्धि को कागजी कार्रवाई दाखिल करने जैसा महसूस करा दिया है।
नौकरशाही की वो तुच्छता।
हाँ, वो असाधारण को भी साधारण और बेजान बना देती है।
इतिहास, स्मृति और शोक ये विषय भी हैं।
बहुत मार्मिक ढंग से गौर के जरिए हम देखते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, वो एक जीवित दर्दनाक व्यक्तिगत अनुभव है। उसका अपने अतीत के लिए शोक असली है,
जबकि मंत्रालय उसे सिर्फ डेटा में बदलना चाहता है।
हाँ, उपन्यास मानवीय नजरिए के महत्व पर जोर देता है। गौर का एक कथन है जो इस खाई को दिखाता है।
कौन सा?
जब वो कहता है, मेरे समय में हमने दुनिया के खाली स्थानों को जीतने की कोशिश की, नक्शे बनाए, लेकिन तुम्हारे नक्शे सब भरे हुए हैं, खोजने के लिए कहीं और नहीं बचा है, केवल प्रबंधित किए जाने वाली चीजें हैं।
दो युगों का नजरिया और इसमें उपनिवेशवाद की गूंज भी है।
हाँ बिल्कुल, गौर खुद ब्रिटिश साम्राज्य का एजेंट था और अब मंत्रालय एक तरह से सामयिक उपनिवेशवाद कर रहा है।
अतीत से संसाधन निकालना।
हाँ, और कथावाचक की कंबोडियन विरासत इस थीम को और पढ़ते देती है।
ब्रैडली ने इन सब विषयों को बुना कैसे है? उनकी शैली कैसी है?
शैली बहुत दिलचस्प है। एक तो प्रथम पुरुष का नरेशन, कथावाचक की आवाज, वो मजेदार है, चौकस है, भावनात्मक रूप से कमजोर भी है, व्यंग्यात्मक भी, पाठक तुरंत उससे जुड़ जाता है।
हाँ, हम दुनिया को उसी की नजरों से देखते हैं, रहस्य भी उसी के साथ खुलते हैं।
और ये जो अलग अलग विधाओं का मिश्रण है, ऑफिस कॉमेडी से शुरू होकर रोमांस, फिर थ्रिलर, फिर नैतिक सवाल, ये पाठक को बांधे रखता है।
कभी उबाऊ नहीं होता?
नहीं, लेखिका ने बिंब विधान इमेजरी का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मंत्रालय का ठंडा क्लिनिकल माहौल और उसके कॉन्ट्रास्ट में कथावाचक और गोर के फ्लैट की गर्माहट
और आर्कटिक की छवियां।
हाँ, वो बार बार आती हैं, वो विशाल खूबसूरत लेकिन जानलेवा बर्फानी दुनिया, वो गोर के अतीत के दर्द, उसके लचीलेपन और उसके अकेलेपन सबका प्रतीक बन जाती हैं।
और उसकी 19वीं सदी की चीजें, वर्दी, घड़ी,
वो उसकी खोई हुई दुनिया और पहचान के प्रतीक हैं। सिंबोलिज्म अच्छा है।
फोरशैडोइंग, पूर्वाभास का भी जिक्र था।
हाँ, कहानी में बहुत कुशलता से बुना गया है। मंत्रालय के असली इरादों के छोटे छोटे सुराग शुरू से मिलते हैं जो पाठक के मन में एक बेचैनी बनाए रखते हैं।
और विडम्बना तो है ही, समय यात्रा जैसी चीज और इतनी नौकरशाही।
हाँ, ये विडम्बना कहानी के हास्य और त्रासदी दोनों को गहरा करती है। एक विचार जो मुझे बहुत छू गया था।
बताइए।
वो कि 1847 के किसी व्यक्ति से प्यार करना एक ऐसे भूत के साथ जीने जैसा है जो मरा नहीं है। खुशी का हर पल इस ज्ञान से रंगा होता है कि वो अपनी तरह का आखिरी है। ये उनके रिश्ते की अनोखी त्रासदी और मिठास दोनों को पकड़ता है।
तो उपन्यास का भावनात्मक प्रभाव काफी गहरा है।
बहुत गहरा। कथावाचक और गौर का रिश्ता इतना वास्तविक लगता है कि पाठक उनके भाग्य से जुड़ जाता है। तनाव वाले पल दिल की धड़कन बढ़ाते हैं और कोमल क्षण बहुत गहरे लगते हैं। एक मीठा कड़वा एहसास रह जाता है।
और ये स्थायी प्रभाव इसलिए छोड़ता है क्योंकि ये आसान जवाब नहीं देता है ना?
बिल्कुल, ये हमें कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करता है। उत्तर जीविता की नैतिकता, इतिहास के मायने, बड़े लक्ष्य के लिए बलिदान,
ये हमें चुनौती देता है कि हम इतिहास के लोगों को सिर्फ नामों की तरह ना देखें बल्कि इंसानों की तरह देखें।
हाँ, शायद सबसे बड़ा सबक कट्टर सहानुभूति का है कि सच्चा मानवीय संबंध किसी भी विभाजन को पाट सकता है।
और शायद इस विशाल अव्यक्तिक सिस्टम वाली दुनिया में
सबसे सार्थक और साहसी काम प्यार और इंसानियत को चुनना ही है। तमाम मुश्किलों के बावजूद किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी एक छोटी सी सांझा दुनिया बनाना।
शायद ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे मानवीय संबंध समय और परिस्थितियों की सबसे कठिन सीमाओं को भी लांग सकते हैं।
या शायद ये प्रगति की मानवीय कीमत पर एक जरूरी सवाल उठाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।